अब यहाँ पे दो लोगों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला एक तीसरे गिरोह के साथ हमारी मुलाकात करवाते हैं, और वो कौन सा है? वमिनन नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखरत पर, हालांकि वो ईमान वाले नहीं। यहाँ से लेके तो आखिर तक आयत 20 में अब दरमियानी चाल वाले लोग हैं। सबसे शुरू में हमने देखा वो लोग जो सच्चे दिल से हिदायत के तालिब थे, कोशिश भी की और उसको पा लिया, कामयाब हो गए। उसके बाद दूसरे वो देखे जो बिल्कुल ही इस चीज़ से दूर। लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने फ़ायदों और अपनी मसलहतों को ही हमेशा अहमियत देते हैं, मौका परस्त लोग। ऐसे लोगों के लिए ये बात बड़ी अजीब होती है कि कोई अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर दे। ऐसे लोगों की हकीकी वफादारियाँ उनके दुनियावी मुफादात के साथ होती हैं, लेकिन हक के साथ एक ज़ाहरी रिश्ता कायम कर लेते हैं और इसी को अकलमंदी महसूस करते हैं। उनको लगता है कि इस तरह इनकी दुनिया भी महफूज हो गई और आखिरत भी महफूज हो गई। दुनिया के फ़ायदे भी ले लिए और हक परस्ती का लेबल भी इन पर लग गया, लेकिन असल में ये एक गलत फहमी है, खुश फहमी है। अल्लाह ताला ने जिसका इजाला इन आयात में किया कि ऐसे लोगों को यहाँ खोल के रख दिया, हर वो बात जो छुपा रहे थे अल्लाह ने जाहिर कर दी। एक लंबी लिस्ट मिलती है आपको मुनाफिकाना रवैयों की इस रुकू में कि जो लोग ऐसे काम करते हैं तो असल में उनके अंदर क्या कुछ है। आपने साथ साथ इसको हाईलाइट करना है और देखना है कि किस तरीके से निफाक वाली चीज़ें जो हैं उन लोगों के अंदर आती हैं और उसकी वजह से फिर वो पीछे पलटते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आपके इस मार्कर है तो आप उसको साथ साथ हाईलाइट करके ऊपर नंबरिंग दें करेंगे 1, 2, 3 करके, ताकि बाद में आपकी लिस्ट पूरी हो जाए। तो बुनियादी तौर पे ये वो लोग हैं जो हिदायत से फ़ायदा नहीं उठाते। आप महसूस कर रहे हैं कि पूरी बात जो है ये हिदायत ही से रिलेटेड चल रही है, हिदायत के मुतल्लिक बात है। बात शुरू हुई थी सूरत फातिहा में हिदायत से, तो पहले वो लोग बताए जो हिदायत से फ़ायदा उठा लेंगे, दूसरे वो मालूम हुए जो हिदायत से फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, अब तीसरे वो हैं कि जो दावेदार तो हैं लेकिन कर नहीं सकते, मान नहीं सकेंगे। तो ऐसे लोगों को मुनाफिक कहते हैं, और सबसे ज़्यादा खतरनाक लोग भी यही हैं, क्योंकि घर के भेदी लंका ढाए। कोई बाहर से उतना नुकसान नहीं दे सकता जितना नुकसान घर वाला देता है। आज दीन के साथ भी यही हो रहा है कि आज इस्लाम को जितना नुकसान मुसलमानों के रवैयों से हो रहा है उतना गैर मुस्लिमों से नहीं। तो देख पूरी आयत को इकट्ठा पढ़ के, वमिनन नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। पहली बात कि वो लोग जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए लेकिन हकीकत में लाते नहीं। पहली सिफत इनकी क्या मिली? कॉल और फेल का तजाद, यकूलु आमन्ना बिल्ला व बिल यौमिल आखिर, लेकिन हकीकत क्या है? वमा हुम बिमुमिनीन। ये नहीं कहा कि ईमान थोड़ा है, कमज़ोर है, बल्कि क्या कहा कि इनका ईमान है ही नहीं। इन्होंने धोखा देना चाहा, अल्लाह ने इनका धोखा खोल के रख दिया, क्योंकि ऐसे लोग हैं कि जो अपने आप को बहुत महफूज समझते हैं लेकिन हकीकत में ये सबसे ज़्यादा गैर महफूज लोग हैं। एक बात इनकी है और एक बात जवाब में अल्लाह ने कही, सच किसकी होगी? वमा हुम भी मोमिनीन, ये ईमान वाले हैं ही नहीं। जो मर्जी कहते रहें, अपना नाम कुछ भी रख लें, लेकिन अल्लाह की नज़र में ये ईमान वाले नहीं। क्यों? क्या अमल है इनका? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू, धोखेबाज। ये है दूसरी सिफत इनकी, इधर धोखा देते हैं। किसको धोखा देते हैं? अल्लाह को भी। और ईमान वालों को। अल्लाह को धोखा देना क्या है कि समझते ये हैं कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से बच जाएंगे जहन्नुम में जाने से, और लोगों को धोखा देना क्या है कि सोचते हैं कि बजाहर मुसलमान होके दुनियावी फायदे ले लेंगे जो मुसलमानों को मिलेंगे, तो धोखेबाज होते हैं। हकीकत क्या है, वमा यखदाउन इल्ला अनफुसहुम, अपने ही नफ्सों को धोखा दे रहे हैं। अपना धोखा क्या है कि सोच तो रहे थे कि इस्लाम की वजह से कल जन्नत मिल जाएगी, हकीकत में नहीं मिलेगी। वमा यशऊरून, ये है उनकी तीसरी सिफत, शऊर से खाली, शऊर नहीं है उनको। और अगर आप गौर करके देखें ना, तो शऊर ना होना क्या होता है, नॉन सीरियस एटीट्यूड, हर वक्त बचकाना हरकतें करने को दिल चाहता है, फन इंजॉय लेयर लस्ट ग्लैमर, ये सब कौन से रवैये हैं। नुमाशरून, शऊर से खाली। जब बंदा असल मकसद से दूर होता है ना, तो फिर उसको छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़े बड़े मकसद दिखने लगती हैं। यही अल्लाह का इंतकाम ऐसे लोगों से कि जो हिदायत के मामले में संजीदा नहीं होते, फिर अल्लाह ताला उनको दुनिया की छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी करके दिखाता है। कभी आपने देखा लोगों को छोटी सी बात पे गम में मुब्तला होते हैं, सारा दिन मारी मारी फिरी एक मैचिंग ढूंढने के लिए। उसके लिए आज का गम ही ये है कि उसकी कमरे की चीज़ों की मैचिंग नहीं मिल सकी उसको, हालांकि ये कोई गम था पालने का? क्या इसके लिए दुनिया में आए? सूरज आज निकला, चांद गया, रात गई, दिन आया, आपने सारा दिन अपने कमरे को दे दिया। कितनी नमाजें गईं, फमा यशरून, कितनी जगह गुनाह हुआ, ला यशरून, ना अपने नफे का पता है ना अपने नुकसान का पता है। फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है। कौन सी बीमारी, ये अगला पॉइंट है, दिल के बीमार हैं, इनके दिल बीमार हैं। दुनिया की मोहब्बत, मुनाफ़त, निफाक, ये सब बीमारियां लगी हुई इनको। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ने और ज्यादा कर दिया इनकी बीमारी को, क्योंकि इंसान जिधर चलता है अल्लाह ताला वही रास्ता आसान करता है। आपने देखा है कि जब बीमार अपने आप को बीमार नहीं समझता तो बदपरहेजी करता है, और बदपरहेजी का नतीजा क्या होता है, बीमारी बढ़ जाती। यही है फ़ज़ादहुमुल्लाहु, ये खुद को बीमार नहीं कहते, मानते नहीं कि हम बीमार हैं, और नतीजे में फिर क्या होता है, और बदपरहेजी करते हैं और दुनिया लेने लगते हैं, परेशान होते हैं तो और दुनिया इकट्ठी करते हैं, उनका ख्याल होता है कि शायद इन चीज़ों को पाके लज्जत मिल जाएगी। लेकिन वलहुम अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब। हम सोचते हैं ये अजाबुन अलीम आखरत में होगा, दुरुस्त नहीं, दुनिया में भी दर्दनाक अजाब है। कौन से अजाब होते हैं मुनाफिकाना रवैयों से दुनिया में? दिल का चैन रुखसत, घर वालों में ना इत्तफाकी, औलादों का नाफरमान होना, शौहर का किसी और औरत में दिलचस्पी लेना, किसी और मर्द का आप में दिलचस्पी लेना, हर वक्त घर में किसी न किसी मसले का उठे रहना, नित नई बीमारियां, लाइलाज मरस, अचानक कोई बहुत बड़ा खर्चा आ गया, ये सब है अजाबुन अलीम, और इसी तरह के बहुत सारे। वजह क्या थी, बीमा खानू यकसिबून, झूठ बोलते थे। ये है अगली सिफत मुनाफिक की, कि ये झूठा होता है। पहले अल्लाह ताला से झूठ बोलता है, क्या कह के, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब कह रहा होता है ना उस वक्त भी दिल में कितने ही माबूद बैठे होते हैं, ला नहीं कह पाता, सिर्फ जुबान से इकरार करता है कि बस तेरे सिवा कोई नहीं। फिर और इसका झूठ क्या होता है, लोगों के साथ झूठ, झूठा स्टेटस, झूठी शान, झूठा नाम, झूठी शोहरत। अगर हम जिंदगी में गौर करके देखें तो सबसे बड़ी एक चीज़ यही दिखती है जो इंसान को निफाक पे माइल करती है, और वो क्या है, झूठ। आप वो हैं नहीं जो बन के दिखा रहे हैं, ये झूठ नहीं है। आपकी जेब में $10 भी नहीं और आप शो कर रहे हैं कि आप 10,000 के मालिक हैं। आप जिस गाड़ी में बैठे हैं वो आपकी नहीं और लोगों को लग रही है वो आपकी है, ये झूठ नहीं है। जिस घर में आप जी रहे हैं, रह रहे हैं, है आपका नहीं, आप अपने नाम की प्लेट लगा के बैठे हैं, ये झूठ नहीं है। और कोई झूठ की बात आप बताइए, कौन से झूठ होते हैं जो अमूमन अमली जिंदगी में बोले और देखे जाते हैं? जी, तालीम झूठी, मतलब डिग्री है नहीं तो वो कहना ठीक है। और आप देखिए कि मुझे तो लगता है कि इतनी लंबी लिस्ट है झूठ की कि जिसको शायद अगर हम पूरी बना के शाया कर दें तो हमें अपने आप से नफरत होने लगे। तभी तो परखेंगे ना अपने आप को कि क्या हमारे अंदर मौजूद है कि नहीं। मसलन आप देखिए कि सबसे पहला तो झूठ ही है ना कि अल्लाह को कहते हैं रब लेकिन शिर्क करते हैं, कभी कौली कभी फेली कभी माली। फिर इसी तरह आप देखिए कि मुबालगा आरई, क्या ये झूठ नहीं? किसी की मुबालगा आरई कैसे करते हैं? तारीफ कितनी, इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी कि बस चांद का टुकड़ा। ये जुमला सच है या झूठ है? चांद का चेहरा देखा है किसी ने कैसा होता है? तुम्हारे लिए तो मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, कर नहीं पाते। चापलूसी, किसी की तारीफ करके उससे काम निकलवाना, क्या ये झूठ नहीं है? फिर आप देखिए जो झूठ कारोबारों में बोले जाते हैं, बिजनेस के झूठ याद है कैसे झूठ बोले जाते हैं? नकली को असली करके दिखाना, पहनना इमिटेशन, साबित करना कि ये सोना है, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? झूठा स्टेटस, लोग सोचेंगे इनके पास गोल्ड की चीज है। अच्छा भाई, मेरे पास नहीं है तो मेरी शान में क्या कमी हुई? आपको क्या लगे? यानी मेरे पास अगर 100 तोले सोना है या मेरे पास 1 तोले भी नहीं, क्या आपको कोई फर्क पड़ा उससे? या तो फायदा ये ना कि मैं आपको बांट दूं थोड़ा थोड़ा, फिर तो वाकई आपको फायदा हुआ। मुझे हैरत होती है सुन के कि लोग कहते हैं कि पहले शादियों में लाखों का जेवर बनता है, एक एक सेट कई कई लाख का बनता है, फिर सिर्फ दुल्हन को नसीब होता है वो शादी वाले दिन पहनने का, उसके बाद कोई उनको पहनने की इजाजत नहीं कि भाई इतना कीमती पहन के कहाँ जाओगे, उसको रखो लॉकर में या उसको वापस कर दो ज्वेलर्स को। और वही सेट जो आपने 3 लाख रुपीज का बनाया, उस तरह का कोई 10,000 रुपए का आर्टिफिशियल बनवा लेते हैं, वही डिजाइन दे के बनवा लेते हैं, फिर वो दुल्हन हर जगह पहनती है। ठीक है, मान लिया, तो पहली दफा 3 लाख रुपए का बनाने की क्या जरूरत थी? आप पहले भी वही पहना लें। सोचिए जरा, आप सोचिए कि क्या बताना चाहते हैं हम। अब इतना ट्रेंड बन चुका कि वही गोल्ड के डिजाइन जो है वो आपको चांदी का कह के लोहे के बना के पॉलिश ऊपर करके दे देते हैं लोग, और 100 वाली चीज 1,000 की बेच रहे हैं इस वक्त, और लोग ले रहे हैं सिर्फ ये कह के कि हाँ बिल्कुल असली लगता है। ये जुमला कितनी दफा खवातीन बोलती हैं, देखो बिल्कुल असली लगता है, ये झूठ नहीं है क्या? क्या जरूरत है ऐसी चीजों की? फिर आप देखिए झूठा तकल्लुफ, हम तकल्लुफात में जो पढ़ते हैं, भूख लगी हुई है भूख नहीं है, ये झूठ है कि नहीं? हाँ, दिल चाह रहा है सोने को लेकिन नहीं नहीं नींद नहीं आई, ठीक है, फोन किसी का आ गया, आप बिजी तो नहीं थे? हाँ नहीं कोई नहीं, बात कर लो। थे बिजी? हाँ बोले, हाँ थे बिजी, आपको इससे जरूरी बात है तो आप जल्दी कर ले। बाज दफा छोटी छोटी बातों पे बच्चों से झूठ बुलवाते हैं, कह दो अम्मी घर पे नहीं है। हाँ? फिर आप देखिए कि झूठी हमदर्दियां लोगों को देना, मुझे तो तुम्हारा बड़ा ही गम है, तुम तो मुझे कभी भूलती नहीं, ये क्या बोलते हैं हम? कभी ऐसा हुआ कि आपको कुछ कभी ना भूले? तुम्हें तो मैंने 100 दफा याद किया, ये क्या? फिर दिखावा जो करते हैं ये क्या है? दिखावे के नाम पे क्या कुछ करते हैं? बस अगर आपने किसी को एक खाने की चीज दे दी लेके, अब वो खाने की चीज उसने खाई लेकिन जो उसका रैपिंग है ऊपर पेपर है उस पे क्या होगा? अब देखिए कैसी ऐसी स्वीट्स और ऐसे चॉकलेट्स हैं कि असल कीमत से 4 गुना महंगी पे मिलती है बाजार से, और वजह क्या है कि वो उसकी पैकिंग का खर्चा है। चॉकलेट अंदर हो सकता है $1 का हो और पैकिंग ऊपर $6 की है, ये क्या है? ऐसा लगता है कि जैसे एक जाहिर परस्ती। फिर इसी तरह आप देखिए कि जो शादी ब्याह के मौके पर झूठ बोले जाते हैं वो तो अल्लाह की बना। हाँ, दुल्हन की उम्र छुपाई जाती है, दूल्हा की तनख्वाह छुपाई जाती है, यहाँ रहते हुए लोग कहते हैं जी स्टेटस छुपाते हैं। सिर्फ इस बात पे शादी के चंद महीने बाद अनबन शुरू हो गई कि बताया था कि लड़का सिटीजन है, शादी के बाद पता चला कि नहीं है, तो अब लड़की कहती है मुझे नहीं रहना। यानी वो चीजें जो कभी मुसलमानों की लिस्टों में नहीं होती थी शादी के मौके पे, आज वो बुनियादें बनी हुई हैं घरों के टूटने की। वजह क्या है कि आज सारी जिंदगी एक दुनिया में रहना, जीना, मरना हमारा सब झूठ पे हो गया, झूठे कागजात बनाना, झूठे पासपोर्ट पे आना, पीसी तस्वीर बना के दूसरी पेश करना, कभी ये कहना हाय बड़ा डर लगता है अल्लाह से, लगता लुकता कोई नहीं, सिर्फ एक जुमला ही है, मैं तो बड़ी गुनाहगार हूँ। जब हम ये जुमला बोलते हैं मैं बड़ी गुनाहगार हूँ, तो क्या वाकई महसूस कर रहे होते हैं गुनाहगार है? क्योंकि जिसको अपने गुनाहों का गम लग जाता है उसको तो नींद नहीं पड़ती रातों को, वो कैसे फिर और गुनाहों का बोझ अपने ऊपर उठाता फिर है? फिर इसी तरह आप देखिए कि बाज लोग हज पे जाते हुए नकली महरम, जहाँ अकेले रहे थे महसूस करा दिए किसी और के साथ रह रहे हैं। यानी 100 बातें, यकीन करें कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें तकरीबन 40 से ज्यादा झूठ लिखे हुए हैं जो हम लोग आम जिंदगी में बोलते हैं। बिमा कानू यकजिबून, झूठे दूर के झूठे। वही जाकी लहुम ला तुफसिदू फिल अर्द, और जब कहा जाए कि जमीन में फसाद ना करो, कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो कहते हैं हम तो इसलाह करने वाले हैं। तो ये अगली सिफत है मुनाफिक की कि फसादी होता है लेकिन खुद को मुसलिह कहता है। तो कोई इसकी प्रैक्टिकल मिसाल समझ में आती? आज के दौर में अमूमन लोग कहते हैं कि अगर हमने अपने दीन पे अमल करके बाहर निकले तो लोगों में फसाद फैलेगा। सुना भाई, असिमिलेट होके जियो ताकि लोग तुम्हें बुरा ना कहें। मुसलमान बन के जियोगे अगर अपने इस्लाम सुन्नतों पे अमल करोगे तो लोग तुम्हें नुकसान देंगे। जी हदीस को ना लो, बिल्कुल हदीस को टच ना करो। तो असल बात क्या है कि फसाद जो है वो फैलता है गुनाहों से, जितने गुनाह करेंगे उतने ही ज़्यादा फसाद फैलेंगे। फिर आप देखिए कि अला इन्हुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून, दोबारा आ गया शऊर ना रखना, गोया कि अल्लाह ताला इनको जाहिल कह रहे हैं कि जहालत है इनकी। व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन नास, और जब कहा जाए कि ईमान लाओ जैसे लोग लाए, कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, तो कहते हैं कि क्या हम बेवकूफ़ों जैसे ईमान लाए? कि दीन वालों को बेवकूफ़ कहते हैं, ये तो नहीं कोई कहता आजकल? फनेटिक, फंडामेंटल, एक्सट्रीमिस्ट, मजाक छोड़ो उनकी, छोड़ो वो तो मुल्ला हैं, वो तो मौलवी हैं, ये लफ्ज़ क्या हैं? दीन का मजाक नहीं आड़ा, बेवकूफ़ क्यों कहते थे? आप देखिए कि जब वो देखते थे कि मुखलिस सहाबा नबी सल्लम की एक कॉल पे जमा हो जाते हैं, सारे सारे घर का सामान ले आते हैं, तो कहते थे ये तो बेवकूफ़ है। आज भी आप देखें किसी को आप ज़रा छोड़ने को कहें, हराम बिजनेस छोड़ दो, और कोई छोड़ दे तो लोग क्या समझते हैं कि इन्होंने बेवकूफ़ी का फैसला किया। अब देखेंगे खाएंगे कहाँ से, अब देखेंगे जरा इनकी बेटियों के रिश्ते कहाँ से आते हैं, घर तो बड़े शौक में इन्होंने बेच दिया है ना। हर दौर में ऐसे लोग मिलते हैं कि जो दीन वालों को बेवकूफ़ कहते हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वह इज़ा लकुल्लज़ीना आमनू कालू आमन्ना, और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए। वह इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम कालू इन्ना माकुम, जब अकेले होते हैं शैतानों की तरफ तो उन जैसे बन जाते हैं। इसको तो मैं एक ही जुमले में बोल देती होती हूँ कि जैसा देश वैसा भेस, है ये नाराज के नहीं? जहाँ जाओ वैसे हो जाओ, गाड़ी में एक दुपट्टा भी रख लो, शायद कभी मस्जिद में जाना पड़े, रुकना पड़े बच्चों को लेने छोड़ने के बहाने ही सही। हाँ, लेकिन अपना आप ऐसा करके भी रखो कि उस लोगों की नज़रों में चुभो भी ना, लोग समझें कि तुम हम ही में से हो। इन्नमा नहनु मुस्तहज़ियून, मजाक उड़ाते हैं। जब अपने दोस्तों में जाते हैं, अपने बड़ों में, तो कहते हैं कि हम मजाक उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते थे, वरना तो हम असल में दिल में तुम्हारे साथ हैं। इंजाम क्या है ऐसे लोगों का? अल्लाह यस्तहज़ियु बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम या मगून, अल्लाह ताला उनका मजाक उड़ाएगा और उनको उनकी सरकशी में ढील देगा। उलाइकल्लज़ीन इश्तरौ अद-दलालत बिल-हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन, ये लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी, लेकिन इनकी तिजारत इनको फायदा न देगी, और नतीजा क्या है, इंजाम क्या? वमा कानू मुहतदीन, कहाँ से बात शुरू हुई थी, कहाँ खत्म हुई?
बताए
हिदायत नहीं मिलेगी। वो कौन थे? औलाइक अला हुदा मिन रब्बिहिम, और ये सारे काम करने वाले कौन हैं? मुनाफिक, हिदायत से दूर। ये हैं असल में अल्लाह की दीवी हिदायत से दूर रहने वाले लोग, बचने वाले लोग। फिर इसकी अगली आयतों में अल्लाह ताला ने इसी दो किस्म की मुनाफिकाना सिफात की कुछ मजीद वजाहत की। मसलहुम का मसल लजिस्तौकद नारा फलम्मा अदात मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम वतरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यर्जियून। इनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक शख्स ने आग जलाई, जब आग ने इसके इर्द गिर्द को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने इनकी बिनाई सल्ब कर दी और इनको अंधेरों में छोड़ दिया और कुछ नजर नहीं आता। बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, अब ये लौटने वाले नहीं। ये है वो मुनाफिक जो मसलहत के तहत मुसलमान हुआ, इसको एतकादी मुनाफिक कहते हैं। दिल में इस्लाम की मोहब्बत नहीं थी, मुकम्मल निफाक है ये। हिदायत के बदले गुमराही खरीदी, नफ्स परस्त है, हसद और तकब्बुर की लपेट में आया, अंधा बहरा गूंगा बन गया, जिसके दिल में इस्लाम आया ही नहीं। जैसे अब्दुल्ला बिन उबई का नाम आप सुनते हैं, उसका इस्लाम ही मशकूक था। सिर्फ उसने मुसलमानों उनके इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए इस्लाम का नाम लिया। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, मसलन कोई मुसलमान हो जाए कि मुसलमानों की इस कस्बाए बनूं, इनकी मस्जिदों में जा सकूं, इस्लाम नहीं अंदर, ये मिसाल है उसकी। फिर मसलन बाज दफा कोई इसलिए मुसलमान हो कि किसी लड़की से शादी करनी है, मजबूरी है, मुसलमान होना पड़ेगा, या कोई लड़की इसलिए मुसलमान हो जाए कि मुझे फलां लड़के से शादी करनी है। तो ये सारी सिफतें हैं इसमें कि दिल में इस्लाम की सच्चाई नहीं लेकिन बन के दिखाना चाहते हैं। ऐसे लोगों का अंजाम क्या है? आग हमेशा की। अल्लाह ताला हिदायत को छीन लेता है इनसे, मजीद दूर कर देता है। और ऐसे लोग फिर बस नाम के मुसलमान हों लेकिन अल्लाह की नज़र में इनका कोई मुकाम नहीं है। लेकिन इसके बरक्स कुछ और लोग होते हैं मसलहत पसंद मुसलमान, उनकी मिसाल आगे है। औ कसय्यिबिन मिनस्समाई फीही ज़ुलुमातुन वरअदुन वबर्क, या आसमान से बारिश हो, तारीकी भी है और गरज चमक भी है, और कड़क से डर कर मौत से बचने के लिए अपनी उंगलियां कानों में ठोंस ले। यानी जो दीन की बात आसान लगी तो मान ली, जो मुश्किल लगी तो उसको छोड़ दी। अल्लाह ताला का फैसला क्या है कि ऐसे मुनकरों को अल्लाह ताला अपने घेरे में लिए हुए, करीब है कि बिजली इनकी आंखों को चक ले। जब भी इन पर बिजली चमकती है वो इसमें चल पड़ते हैं, जब इन पर अंधेरा छाता है तो रुक जाते हैं, और अगर अल्लाह चाहे तो इनके कान और इनकी आंखों को सल्ब कर ले। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आयतें तो हमने पढ़ ली दोनों किस्में, ये दूसरे वो थे जो कभी मुसलमान होते हैं, यानी हैं मुसलमान, अमल नहीं करते, दिल मुसलमान नहीं है इनके, निगाहें मुसलमान नहीं है, अंदर कुछ खैर नहीं है, बज़ाहर ढंडोरा बहुत है इस्लाम का लेकिन अंदर की हालत बड़ी ख़राब है। अब आप देखिए कि ये सारी चीज़ें जो करने वाले लोग हैं, इनके अंजाम, ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ ली, हमने क्या करना है? अपने लिए अमल की बातें लिखेंगे ना, क्योंकि अब जो चीज़ हमने सुनी, अगर इसमें से हमारे लिए अमली फ़ायदा ना निकला तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले अगर आप सफ़ा नंबर 11 खोलें अपनी वर्कबुक का, तो इसमें एक उनवान आप देखेंगे, हम क्या करें। तो पहली चीज़ क्या है? कुरान मजीद की रहनुमाई से इस तरह फ़ायदा उठाना है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने उठाया। उन्होंने कैसे उठाया था? हिदायत को अपनी हर चीज़ से प्यारा कर लिया, सब कुछ लौटा के अल्लाह के नबी सल्लम के पास पहुँचते थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ जब हिजरत करके मक्का से मदीना जाने लगे तो लोगों ने रोक लिया, कहने लगे ये दौलत हमें दे के जाओ, तुमने यहाँ कमाई है, कहा ले लो। फिर जाने लगे आगे तो ससुराल वाले आ गए, कहने लगे ये बीवी अपनी हमें दे के जाओ, ये हमारी बेटी है, हम इसको साथ नहीं जाने देंगे, बीवी छोड़ दी। थोड़ा और आगे चलने लगे, अपने ही खानदान के लोग आ गए कि ये पोता हमारा है, ये दे के जाओ, ये हमारी नस्ल है, उसको दिया। और अल्लाह के नबी सल्लम के पास पहुँचे तो कहा अल्लाह के नबी सब कुछ लुटा के आया हूँ, सिर्फ तन के कपड़े हैं। तो आपने खुशखबरी दी, कद्र बेहल बे, कि तुझे तेरी तिजारत नफ़ा दे, तूने फ़ायदे का सौदा किया। आज के इस दौर में अगर हमने इस कुरान से वैसी हिदायत न ली जैसी कि अल्लाह के नबी के साथियों ने ली थी, तो याद रखिए हम नहीं बचेंगे। हिदायत का चिराग जो मादूम हो रहा है इस वक्त भी, मद्धम पड़ रहा है, अगली एक दो नस्लों तक पहुंचने में ये टमटमाने लगेगा, और खुदा ना करे कि ये बिल्कुल ही बच जाए। क्या होगा, कैसे मिलेगी हिदायत? कुरान मजीद बाकायदा सीखना है अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए, लोगों को मुश्किल में डालने के लिए नहीं कि उनको फतवे देते रहें कि तुम काफिर और तुम मुनाफिक। अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए कुरान सीखना है। करते हैं ये सब, ये आज का अज़्म है ना, इरादा है हमारा। क्या महसूस किया आपने? ये भी तो हमने सिर्फ एक, इस पे एक ऐसा लग रहा है कि बस इसकी तफहीम हुई है, लेकिन इसमें कितनी ही चीज़ें मिलती हैं जो हमारे अपने अमल के ऊपर आती हैं। फिर आप देखिए कि निफाक की सारी निशानियों को अपने अंदर से ख़त्म करना है, या आप इसी के नीचे हाथ से लिखेंगे। कुछ चीज़ें मैं ऐड करवाया करूँगी, वो आप इसी में साथ साथ लिखा करेंगे। निफाक की निशानियों को ख़त्म करना है, सर फहरिस्त इसमें क्या है कि झूठ को ख़त्म करना है। ये आपकी होम एक्टिविटी है और आप क्लास से पहले के वक्त में इसको डिस्कस करेंगे आपस। और वो क्या है कि अब से लेके आने तक के वक्त में आपने अपने झूठ नोट करने हैं, जो आपकी जुबान ने बोले वो भी, आपके दिल ने बोले, तसन्नो बनावट, सामने कुछ बाहर कुछ, चीज़ किसी की है साबित अपनी करना, किसी के बच्चे को उसके सामने प्यार किया उसके पीछे से छोड़ दिया, माँ बाहर गई तो बच्चे को घूरने लग गए, माँ सामने ही तो कहा कितना प्यारा बच्चा है, शौहर घर में आए तो सास की खूब खिदमत हो रही है और शौहर नहीं है तो उसको बेचारी को पूछते भी नहीं। बास दफा इस तरह करना कि शौहर को कहना सारा दिन काम करती रही, सुबह वो निकले तो किचन में थे, सारा दिन अपनी मर्जी से घूमते फिरते रहे, शाम उसके आने का वक्त हुआ तो फिर ऐसे किचन में लगे कि सारा दिन निकली नहीं, ये झूठ नहीं है? बाज़ दफ़ा कहते हैं सुबह से बैठी नहीं। आप सोचिए जरा, ये जुमला कभी कोई हो सकता है जो सुबह से ना बैठा हो? सुबह से एक मिनट के लिए आराम नहीं किया, 100 बार कहा है, बाजी नहीं, बच्चों को माएँ क्या कह रही होती हैं, 100 बार कहा है, बाकी कहा होता है आपने, 1000 बार कहा है। फिर इसी तरह आप देखिए किसी को मिलते कहते हैं बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, होती कोई भी नहीं, क्या ये झूठ नहीं है? किसी को आया देखा, अरे आइए अभी अभी आपका ही जिक्र हो रहा था, मैं तो बहुत कम खाती हूँ, जब किसी अच्छी महफिल में जाते हैं जहाँ प्रोटोकॉल से, तो कहते हैं नहीं बस मैं तो कम खाती हूँ, और अकेले में बिल्कुल कैसे खा रहे होते हैं। कहना बेटी को, सुनाना बहू को, ये सारी चीज़ें आपने अपने, मैंने आपको सिर्फ हिंट्स दे रही हूँ कि आपने इसी तरह के झूठ अपने जमा करने हैं। इसके बाद आखिर में आप अगर ये लिस्ट खोल के देखें जो हमारे पेज नंबर 11 पे, अपना जायजा लेना है। इसको मैं चाहूंगी कि हम इस वक्त में देखें कि ये है वो एनालिसिस जो ट्रू एनालिसिस हमें फायदा देगा। अगर आपने ये हिस्सा मिस कर दिया ना, तो आज की जो नशिस्त थी ना, उसका वो असर नहीं ले सकेंगे जो मिलना है। तरीकाकार इसका क्या होगा, यानी चेकलिस्ट आपके सामने है। क्या मेरे दिल को यकीन है कि, अब इसके नीचे सवाल आते हैं, 23 सवाल क्वेश्चंस हैं आपके सामने, और उनके जवाब आपने अपने आप को खुद कटहरे में खड़े करके देने हैं। किसी को मत बताएं, अपनी ये नोटबुक्स आप अपने ही पास रखेंगे, कोई नहीं चेक करेगा, लेकिन आप खुद गाहे बगाहे चेक करेंगे। मसलन देखिए कि पहला सवाल इसमें क्या है, कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है। इसका तरीका क्या होगा कि आप बैठ जाएंगे फारिग, जब आपको पूरे दिन में, रात और दिन में बिल्कुल इत्मीनान से बैठें, जब आपके जहन पर कोई बोझ ना हो, जब आपके पास कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है, और एक एक सवाल करें अपने आप से ऊंची, फिर उसके बाद सोचें इसके बारे में, क्या वाकई यकीन है ये अल्लाह की किताब है? नहीं, किसी हद तक, बहुत हद तक, ये चारों में से जो आपकी सही फीलिंग्स है उसके नीचे आप क्लिक करेंगे, टिक लगा देंगे। अगर आप बगैर सोचे समझे करेंगे से, तो आप फौरन हाँ में लगाएंगे। कौन है जिसको यकीन नहीं कि किताब अल्लाह की है? फिर आप इसको आगे सोचें, अल्लाह की किताब है, वाकई मुझे यकीन है अल्लाह की किताब है, क्या वाकई फिर भी इसको छोड़ा हुआ है? क्या वाकई इस किताब से मेरा जोड़ जो है ऐसा है कि अल्लाह की किताब है और मैं इसको छोड़ूं? यानी अपने अंदर से निकालें चीजें, अंदर से निकालें, फिर जो आपका दिल जवाब दे ना वहां पर लगा दे। फिर अगला सवाल, कुरान मजीद में कोई शक नहीं। अब आप देखें इसमें आप गए, देखिए बेसोचे समझे लगाएंगे तो आप 1 सेकंड में लगा देंगे हाँ, किसको शक होगा कि नहीं है? नहीं, शक कैसे? क्या मैं आज सोचती हूँ कि इस किताब के ऊपर अमल हो सकता है? क्या मैं ये तो नहीं सोचती ये 1400 साल पुरानी किताब है? क्या ख्याल है? ये मेरा ख्याल है कि ये वाकई आज भी अगर इस पे अमल करें तो इज्जत मिलती है? क्या आज के दौर में अमल हो सकता है? ये सारी चीज़ों में शक, यानी शक से मुराद क्या है कि इस किताब के अंदर जो मजामीन है वो लोगों की हिदायत के हैं। फिर इसका आप जवाब लिखेंगे। फिर आगे देखें, अल्लाह ताला का खौफ रखने वाले कुरान मजीद की हिदायत से फ़ायदा उठाते हैं। आप इसका जवाब अपने आप को देंगे कि वाकई आज तक अगर मैं हिदायत से दूर हूं तो इसका मतलब ये कि मेरे अंदर तो अल्लाह का खौफ ही नहीं है या कम है? क्योंकि जब अल्लाह का खौफ आता है ना तो फिर इंसान तो फौरन इस किताब को थामता है। फिर आप देखिए, नमाज कायम करने वाले कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ये सारे सवाल आप इसमें से पढ़ते जाएंगे और इसके बाद आप इन सब की अपने पास एक जगह बना लेंगे कौन सी है। फिर इसके बाद क्या होगा कि आप देखेंगे ना, जहाँ आपको हाँ है उस पे तो आपने मुतमईन रहना है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ नहीं है जिन जितने आपके पॉइंट्स में नहीं लिखे हैं उसके बारे में आपको तश्वीश लाहक हो कि ऐसा क्यों नहीं है, क्या वाकई मैं इससे बगैर गुजर जाऊंगी? फिर जहाँ किसी हद तक है उसको आपने बदलना है बहुत हद तक के लिए। आपका नेक्स्ट गोल क्या होगा कि आपने अब इसमें अपने उस यकीन को आगे बढ़ाना है और जहाँ बहुत हद तक है उसको अपने हाँ पे लाना है। आप समझ रहे हैं? यानी स्विचिंग करनी है। अगर आपके जितने पॉइंट्स नहीं पे हैं तो आपने उसको वन बाय वन लाना है आगे, किसी हद तक पे लाना है। फिर आप अगर इसी तरह चेक करते रहे, आज ये बात है हर वीक में जो बीच में दिन मिलेंगे ना आपको, उसमें अपने इन्हीं लिस्ट को अपने साथ गौर करते रहना कि कहाँ तब्दीली आई, आज पहले से बेहतर हुआ, नहीं था तो किसी हद हो गया, किसी हद में था तो बहुत हद पे चला गया और बहुत हद से अब हाँ में बदला के नहीं, और जो हाँ में थी अभी भी इस चीज़ मौजूद है। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी मुश्किल लगे और आप ये सोच रहे होंगे कि इसका क्या फ़ायदा है, अपना जायजा लेंगे ना। देखिए कि हम खुद को नहीं जान रहे होते, हम सारी दुनिया को पहचान लेते हैं लेकिन खुद को नहीं पहचानते। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ये आखिरी पॉइंट्स हैं कि कुरान मजीद की रहनुमाई से फ़ायदा ना उठाने वाले बेवकूफ़ हैं मगर जानते नहीं। क्या वाकई थोड़ा एक तदब्बुर का अंदाज़ आपके जहन में आना चाहिए कि हम इस किताब की रहनुमाई के बग़ैर अगर दुनिया में जी रहे हैं तो हम बेवकूफ़ी से जी रहे हैं, हिदायत के बदले गुमराही ले ली। कभी आपको अल्लाह ना करे किसी साइकाट्रिस्ट के पास आप जाएं तो यकीन करें वो ऐसी ही बातें बुलवाते हैं आपसे, सोचो कौन है, फलां के बारे में क्या सोचते हो, अच्छा बचपन में वहाँ गए थे, अच्छा इस लोगों में बैठते हो तो तुम्हारे दिल में क्या आता है, वो इस तरह की चीज़ें आपसे अंदर से उगलवाते हैं। और जब आपकी वो अंदर की गिरा खुल जाती है तो आप ठीक हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर मरीज की इलाज करते हुए उसकी अंदर से बीमारी जानता है ना, तो असल में ये जायज़ा लेना क्या है, अपनी बीमारी को डायग्नोज करना है। इंशाल्लाह ताला हम सूरह यासीन का पहला रुकू करेंगे। हर दिन हर सबक के एतबार से एक मुख्तलिफ लेसन होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो बात भी हम सीखें और सिखाएं उसको हमारे लिए नफ़े वाला बना दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر